एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूँ आपकी पहली साथी इस ज्ञान यात्रा पर।
और मैं हूँ आपका दूसरा साथी। आज हम गोता लगा रहे हैं विचारों के एक ऐसे महासागर में जिसने हमारी आज की दुनिया को घड़ा है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रबुद्धता यानी एनलाइटनमेंट की।
बिल्कुल। और इस सफर में हमारी गाइड होगी एक बहुत ही अहम किताब, What's Left of Enlightenment। इसके संपादक हैं कीथ माइकल बेकर और पीटर हांसरेल। अब शायद सोचने वाली बात है कि भाई 18वीं सदी के यूरोप की बातें आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं?
हाँ, ये सवाल तो उठता है, वाजिब है। लेकिन जरा सोचिए, जब हम आजादी की बात करते हैं या तर्क की, विज्ञान की, मानवाधिकार,
धर्मनिरपेक्षता,
हाँ धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो हम मतलब जाने अनजाने प्रबुद्धता की ही भाषा बोल रहे होते हैं।
अच्छा।
पर साथ ही जब उन औदी परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, है ना, या फिर पश्चिमी विचारों का जो दबदबा है उसकी आलोचना करते हैं, तब भी हम इसी विरासत से, वो कहते हैं ना, जूझ रहे होते हैं।
हाँ।
तो ये किताब इसी उलझी हुई डोर को थोड़ा सुलझाने में मदद करती है।
चलिए, ये तो दिलचस्प है। तो पहले इन संपादकों से थोड़ी जान पहचान कर ले जिन्होंने ये महत्वपूर्ण काम किया है।
जरूर। कीथ माइकल बेकर, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास के जाने माने प्रोफेसर हैं, एमेरिटस हैं अब तो। खासकर फ्रांसीसी क्रांति और उसकी जो वैचारिक जड़ें हैं उन पर इनके काम के लिए जाने जाते हैं।
अच्छा।
उनकी दिलचस्पी इसमें ज्यादा है कि भाई कागज पर लिखे विचार वो सड़कों पे क्रांति कैसे बन जाते हैं।
वाह। और दूसरे संपादक?
दूसरे हैं पीटर हांसरेल। ये UCLA में इतिहास के प्रोफेसर थे, अब नहीं रहे। इनका ध्यान जर्मन प्रबुद्धता पर था और विज्ञान और इतिहास लेखन का जो आपसी रिश्ता है उस पर। उन्होंने प्रबुद्धता के उन पहलुओं पर ज्यादा रोशनी डाली जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे भावनाएं, इतिहास, संस्कृति, इनकी क्या भूमिका थी।
तो ये दोनों अलग अलग विशेषज्ञता वाले लोग साथ आए।
हाँ, और यही बात इस किताब को खास बनाती है।
ठीक है।
एक फ्रांसीसी राजनीतिक विचारों का एक्सपर्ट, दूसरा जर्मन बौद्धिक इतिहास का। और देखिए, वे प्रबुद्धता के कोई अंधभक्त या कटु आलोचक नहीं है।
अच्छा।
वो तटस्थ होकर एक विद्वान की तरह इसकी जटिल परतों को उधेड़ते हैं। इसीलिए ये किताब एक तरफा नहीं लगती बल्कि संतुलित और गहरी लगती है।
ठीक है, तो ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है, इसका मतलब मोटा मोटा सार क्या है?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये किताब प्रबुद्धता को किसी एक पत्थर की मुहूर्त की तरह नहीं देखती
कि या तो पूजो या तोड़ दो।
हाँ बिल्कुल। बल्कि इसे विचारों के एक बहते दरिया की तरह देखती है जिसमें अलग अलग धाराएं हैं, कहीं शांत, कहीं तेज, कहीं आपस में टकराती हुई भी।
तो मतलब प्रबुद्धता कोई एक चीज नहीं थी, कोई एक आंदोलन नहीं था।
बिल्कुल, यही किताब का केंद्रीय सवाल है कि आज के इस उलझे हुए दौर में, है ना, जब हर पुराने विचार पर शक किया जा रहा है, तब 18वीं सदी की इस विरासत का हमारे लिए क्या मतलब है? क्या वो तर्क, प्रगति, मानवाधिकार जैसे विचार आज भी उतने ही मायने रखते हैं, या उनमें कुछ मतलब बुनियादी खामियां थी? ये किताब कोई आसान जवाब नहीं देती बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है।
इसमें एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी थी जब मैं पढ़ रही थी, वो ये कि जिसे हम आज समाज कहते हैं, सोसाइटी,
हाँ,
है ना, मतलब धर्म और राजशाही के कंट्रोल से अलग नागरिकों का अपना एक दायरा,
हाँ,
जिसे तर्क से समझा जाए, बेहतर बनाया जा सके, शायद इस समाज का आइडिया ही प्रबुद्धता की एक बड़ी खोज थी।
बिल्कुल सही कहा, ये अपने आप में एक बड़ा दावा है। और ये किताब सीधी तारीफ या बुराई से बचती है, ये दिखाती है कि कैसे इन्हीं विचारों को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समयों में लोगों ने अपनाया भी, अपने हिसाब से बदला भी, और कई बार चुनौती भी थी।
अच्छा।
तो ये पूछती है कि आज जब हम पोस्ट कॉलोनियल आलोचना, नारीवाद या पर्यावरण संकट जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो इस पुरानी विरासत से कैसे निपटा जाए?
तो ये किताब सिर्फ इतिहासकारों के लिए नहीं है, आम पाठक के लिए भी है।
कतई नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि हमारी आज की सोच, हमारे झगड़े, हमारी उम्मीदें, इन सब की जड़ें कहाँ हैं। ये एक तरह से बौद्धिक हिसाब किताब है। और शायद सबसे अहम बात जो ये कहती है वो ये कि प्रभुत्ता की सबसे कीमती चीज कोई तैयारशुदा जवाब नहीं है,
बल्कि
सवाल पूछने का हौसला है। वो जो कांट ने कहा था ना, सपेरे आउडे,
हाँ, जानने का साहस करो,
हाँ, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, शायद यही सबसे बड़ी देन है।
चलिए, ये तो एक अच्छा ओवरव्यू था, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। किताब के अलग अलग हिस्सों में किन मुख्य विचारों पर बात हुई है?
हाँ, तो शुरुआत में जैसा आपने भी कहा, संपादक की जमीन तैयार करते हैं कि भाई प्रभुत्ता को अच्छा या बुरा के खांचे में फिट करना गलत है। और कीथ बीटे का वो समाज की खोज वाला तर्क यहीं आता है, जो आधुनिक सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान की नींव रखता है।
फिर किताब आगे बढ़ती है तर्क, प्रकृति और इतिहास जैसे विषयों पर। यहाँ क्या खास बातें निकल कर आती हैं?
यहाँ कई दिलचस्प बातें हैं। जैसे एक लेखक हैं डैनियल गॉर्डन, वो बताते हैं कि फ्रांसीसी प्रबुद्धता में भी बहुत मतभेद थे। वो कोई एक सुर वाली आवाज नहीं थी।
अच्छा।
उसे सिर्फ मतलब कट्टरपंथी या नास्तिक मान लेना इतिहास को बहुत सिकुड़ना है। इसी तरह पीटर रेल इस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि प्रबुद्धता इतिहास को नकारती थी। ऐसा नहीं था
क्या सच में? मुझे तो यही लगता था।
नहीं, वो दिखाते हैं कि प्रबुद्ध विचारकों ने इतिहास लिखने के नए तरीके ईजाद किए, जिससे अतीत से नैतिक सबक सीखे जा सकें, जिसे उन्होंने दार्शनिक इतिहास कहा।
और तर्क यानी रीजन, क्या उससे सब समस्याओं का रामबाण इलाज माना गया था?
नहीं, यहीं पर लोरेन डास्टन का काम महत्वपूर्ण है। वो बताती हैं कि 18वीं सदी के विचारक तर्क को कोई आसमान से उतरी चीज नहीं मानते थे।
तो फिर क्या मानते थे?
वे इसे इंसान की कुदरती क्षमता समझते थे, जिसे सीखना पड़ता है, जो गलतियां कर सकती है और जिसकी अपनी सीमाएं हैं।
अच्छा।
उनकी दिलचस्पी इसमें थी कि इंसान असल में सोचता कैसे है, जिसे हम आज शायद मनोविज्ञान कह सकते हैं। तो वो तर्क के पुजारी थे, लेकिन वो उसकी सीमाओं को लेकर भी सचेत थे।
ये तो बहुत नुआंस्ड बात है। किताब का अगला हिस्सा सार्वजनिक जीवन और राजनीति पर है, इसमें क्या खास है?
यहाँ डैना गुडमैन सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक स्फीयर के जन्म की कहानी बताती हैं।
पब्लिक स्फीयर मतलब?
मतलब कॉफी हाउस, सैलून, अखबार, ये वो जगहें थीं जहां आम लोग, मतलब जो राजा या पादरी नहीं थे, वो पहली बार खुलकर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बहस कर सकते थे।
अच्छा।
और यहीं से जनमत, पब्लिक ओपिनियन, एक ताकत बनकर उभरा। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन बहसों को आगे बढ़ाने में महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले सैलून का भी बड़ा हाथ था।
वाह, लेकिन क्या इस चमक के पीछे कुछ अंधेरा भी था, कोई डार्क साइड?
हाँ बिल्कुल, और डेविड बेल इसी स्याह पक्ष पर रोशनी डालते हैं। उनका तर्क है कि पुरानी सत्ताओं जैसे राजा या चर्च को गिराकर प्रबुद्धता ने कई बार राष्ट्र, जनता या तर्क को ही नई मूर्तियों की तरह खड़ा कर दिया। और फिर इन नई अमूर्त सत्ताओं के नाम पर भयानक हिंसा भी हुई, जैसे फ्रांसीसी क्रांति का जो टेरर का दौर था।
हाँ वो तो है,
वो इसका एक उदाहरण है। यहीं से आधुनिक जो आक्रामक राष्ट्रवाद है उसके कुछ बीज भी पड़े।
और सामाजिक विज्ञानों का जन्म, इसका भी जिक्र है?
हाँ, जोहान हेलब्रॉन दिखाते हैं कि कैसे समाज को एक वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिशें शुरू हुई। ये विचार के समाज के भी अपने नियम होते हैं, जिन्हें समझा जा सकता है और शायद बदला भी जा सकता है। यहीं से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों की औपचारिक शुरुआत हुई। ये भी प्रबुद्धता की एक बड़ी देन मानी जा सकती है।
तो कुल मिलाकर अंत में किताब किस नतीजे पर पहुंचती है? क्या बचा है भाई प्रबुद्धता का आज के लिए?
निष्कर्ष यही है, जिसे पीटर रेल ने भी अपने हिस्से में उभारा है, कि प्रबुद्धता की असली विरासत कोई मतलब तैयारशुदा सिद्धांतों का पुलिंदा नहीं है।
तो फिर क्या है?
बल्कि आलोचनात्मक ढंग से सोचने का तरीका है, एक मेथड है, एक रवैया है, कि हम तर्क का इस्तेमाल करें दुनिया को समझने और बेहतर बनाने के लिए।
लेकिन
साथ ही इस बात के प्रति भी सजग रहें कि तर्क खुद कहां तक जा सकता है और उसके अपने खतरे क्या हैं। शायद हमें एक ऐसी प्रबुद्धता चाहिए जो अपनी ही आलोचना कर सके, जो थोड़ी विनम्र हो, सेल्फ क्रिटिकल हो।
अच्छा, तो अगर हमें इस पूरी चर्चा के कुछ मुख्य सूत्र, कुछ की थीम्स पकड़ने हो तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से सबसे पहला सूत्र तो यही है कि प्रबुद्धताएं अनेक थीं।
प्लुरालिटी ऑफ एनलाइटनमेंट्स,
मतलब एक नहीं कई।
हाँ, कोई एक अकेली यूरोपीय प्रभुत्वता नहीं थी। फ्रांस की अलग थी, जर्मनी की अलग, स्कॉटलैंड की अलग, और सब में अंदरूनी बहसें और तनाव थे।
जैसे भारत में भी हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन या सुधार आंदोलनों की भी कई धाराएं थी, कोई एक चीज नहीं थी।
बिल्कुल सही मिसाल दी। दूसरा सूत्र जो आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है वो है सार्वभौमिकता और विशिष्टता के बीच का तनाव,
यूनिवर्सल और पर्टिकुलर।
हाँ, प्रबुद्धता ने ऐसे विचारों की बात की जो पूरी मानवता पर लागू हों, जैसे मानवाधिकार। लेकिन आलोचक पूछते हैं कि क्या ये सार्वभौमिक विचार असल में यूरोपीय या पश्चिमी ही थे?
ये तो बड़ा सवाल है।
हाँ, जैसे क्या विकास का एक ही मॉडल सबके लिए सही है, या न्याय की धारणा हर संस्कृति में एक जैसी है? ये सवाल आज भी हमारे सामने है।
और तीसरा, जो आपने पहले भी इशारा किया था, प्रबुद्धता और उपनिवेशवाद का रिश्ता, ये थोड़ा मुश्किल विषय है। हाँ, और बहुत संवेदनशील भी। ये मानना पड़ेगा कि सभ्यता, प्रगति जैसे प्रबुद्ध विचारों का इस्तेमाल अक्सर औपनिवेशिक हुकूमतों ने अपने राज को सही ठहराने के लिए किया, ये एक सच्चाई है।
लेकिन
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किताब ये भी दिखाती है कि कैसे औपनिवेशों में लोगों ने इन्हीं विचारों जैसे आज़ादी, बराबरी, आत्मनिर्णय को हथियार बनाकर अपनी लड़ाई लड़ी।
अच्छा,
तो विचारों का ये लेन देन बड़ा जटिल था, एक तरफा नहीं था।
और क्या खास संदेश निकलते हैं इस किताब से, और कौन से थीम्स हैं?
एक और अहम बात है आलोचनात्मक तर्क का खुद विकसित होना। मतलब प्रबुद्धता सिर्फ तर्क का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि खुद तर्क पर भी सवाल उठाती है, अपनी गलतियों से सीखती है। ये कोई अंतिम सत्य नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
सिद्धांत और व्यवहार के बीच का फासला भी एक विषय उभरता है ना?
जा।
जैसे बड़े बड़े आदर्श और जमीनी हकीकत में अंतर होता है।
बिल्कुल, जैसे हमारे संविधान में कितने महान सिद्धांत हैं, पर समाज में उन्हें पूरी तरह उतारना कितना मुश्किल है, ये हम रोज देखते हैं। प्रभुत्वता के साथ भी ऐसा ही हुआ, विचारों और अमल में फासला रहा। और शायद सबसे टिकाऊ विरासत जो मुझे लगता है वो है आलोचना, खुद, क्रिटिक एज द एंड्यूरिंग लेगेसी,
वो कांट वाली बात।
हाँ, वही, जानने का साहस, हिम्मत करके सवाल पूछना, चाहे वो सत्ता हो, परंपरा हो या खुद अपने प्यारे विचार ही क्यों ना हो। शायद यही वो चीज है जो प्रभुत्वता से हमें आज सबसे ज्यादा सीखनी है।
इस किताब में जरूर कई ऐसी बातें होंगी जो एकदम से याद रह जाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या कुछ ऐसे मुख्य विचार या कोट्स जैसे हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं?
हाँ, कई हैं। पहला तो कांट का वही नारा है, सपेरे आउदा, अपने विवेक का प्रयोग करने का साहस करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक तरह से जीवन जीने का तरीका है
कि सुनी सुनाई बातों पर नहीं अपनी समझ पर भरोसा करो।
बिल्कुल, लेकिन फिर तर्क का एक स्याह पहलू भी है, वो अडोर्नो और हॉर्कहाइमर वाली चेतावनी याद है?
हाँ, पूरी तरह से प्रबुद्ध पृथ्वी आपदा का विजय गान करती है, थोड़ा डरावना है ये।
हाँ, मतलब जब तर्क का इस्तेमाल बिना नैतिकता और संवेदना के सिर्फ एक टूल की तरह होता है तो वो विनाशकारी भी हो सकता है। यह हमें टेक्नोलॉजी और तथाकथित प्रगति के अंधे मोह से सावधान करता है।
और वो सार्वभौमिकता वाली बात पर भी एक अच्छी टिप्पणी है।
हाँ, कि प्रबुद्धता की सार्वभौमिकता हमेशा से विशिष्ट थी, मतलब जो विचार सबके लिए कहकर पेश किए जाते हैं उनमें अक्सर किसी खास समय, जगह और संस्कृति की छाप होती है।
तो हमें दावों के पीछे छिपी इन बातों को पहचानना सीखना होगा।
सही कहा, और उपनिवेशवाद के संदर्भ में ये बात बहुत मायने रखती है।
उपनिवेशित लोगों ने प्रबुद्धता की अवधारणाओं को निष्क्रिय रूप से स्वीकार नहीं किया,
बल्कि सक्रिय रूप से उनकी व्याख्या की, उन्हें अपने मकसदों के लिए बदला। ये हमें याद दिलाता है कि विचार कभी एक तरफा यात्रा नहीं करते, उनका आदान प्रदान हमेशा दो तरफा होता है, जिसमें ताकत का खेल भी शामिल होता है।
और अंत में आज के लिए इसका निचोड़ क्या है?
वो ये है कि प्रबुद्धता का जो अवशेष है वो सिद्धांतों का कोई तयशुदा सेट नहीं, बल्कि मानवीय ज्ञान और कर्म की स्थितियों पर लगातार आलोचनात्मक ढंग से सोचते रहने की प्रतिबद्धता है।
मतलब प्रबुद्ध होना कोई मंजिल पा लेना नहीं है,
नहीं,
बल्कि सवालों के साथ जीते रहने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है।
बिल्कुल, एक सतत प्रक्रिया।
ये तो गहरे दार्शनिक विचार हैं, पर क्या इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई लेना देना है? कुछ प्रैक्टिकल बातें?
जरूर है, शिक्षा को ही लीजिए। ये विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हम बच्चों को सिर्फ जानकारी रटाने की बजाय सवाल पूछना सिखाएं।
हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग।
हाँ, आलोचनात्मक सोच और अलग अलग नजरियों को समझना सिखाएं। कैसे हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं जो आलोचनात्मक सोच के साथ साथ सांस्कृतिक संवेदनशीलता को भी बढ़ावा दे, ये एक चुनौती है।
और आजकल जिस तरह की बहसें हम ऑनलाइन देखते हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, उसके बारे में क्या?
बिल्कुल, ये पब्लिक स्फीयर वाला विचार आज बहुत जरूरी है। हम कैसे एक ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग तर्कों के साथ इज्जत से असहमत हो सकें?
मुश्किल लगता है आजकल तो।
है तो, सोशल मीडिया के शोर में क्या हम सच में एक दूसरे को सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी बात चिल्ला रहे हैं? उस पुराने कॉफी हाउस या सलून वाली बहस की जो भावना थी, उसे आज कैसे जिंदा रखा जाए, ये बड़ा सवाल है।
टेक्नोलॉजी और प्रगति को लेकर भी हमें सोचने को कहता है ना?
बिल्कुल, हर नई तकनीक आती है, उसके फायदे गिनाए जाते हैं, पर क्या हम उसके संभावित नुकसान, उसके सामाजिक और नैतिक असर के बारे में उतनी ही गंभीरता से सोचते हैं?
अक्सर नहीं।
हाँ, प्रबुद्धता का जो संयमित रूप है वो हमें यही संतुलन सिखाता है, उम्मीद रखो पर आंखें खुली रखो, सावधान रहो।
और बड़े स्तर पे जैसे देशों के बीच संबंध या मानवाधिकारों के मामले में?
वहाँ भी वही सवाल है, सार्वभौमिक आदर्श और जमीनी हकीकत, अलग अलग संस्कृतियों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए? क्या मानवाधिकार का एक ही मतलब पूरी दुनिया में हो सकता है, या हमें स्थानीय संदर्भों को भी ध्यान में रखना होगा? यह बहस लगातार चलती रहती है।
और अगर हम अपनी बात करें व्यक्तिगत स्तर पर, मेरे लिए आपके लिए क्या है इसमें?
व्यक्तिगत स्तर पर तो यह सबसे ज्यादा लागू होता है मेरे ख्याल से। क्या हम अपनी मान्यताओं पर, अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं?
मुश्किल है।
है तो क्या हम नई जानकारी या सबूत मिलने पर अपना मन बदलने को तैयार हैं? खुद पर हंस सकना, अपनी सोच की सीमाओं को मानना, यही शायद असली जानने का साहस है, आत्म आलोचना।
तो इस पूरी गहरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? व्हाट्स योर मेन टेक अवे?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि प्रबुद्धता कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप या तो पूरी तरह अपना लें या पूरी तरह ठुकरा दें। ऐसा नहीं हो सकता।
बिल्कुल नहीं।
जरूरत है जिसे कह सकते हैं एक आलोचनात्मक दोस्ती की, क्रिटिकल एप्रोप्रिएशन, यानी उसकी अच्छी बातों को समझदारी से लें, उनसे सीखें, लेकिन उसकी कमियों, उसके अंधेरे कोनों और उसके ऐतिहासिक संदर्भ को भी नजरअंदाज ना करें। ये एक पैकेज डील है जिसे सावधानी से खोलना पड़ता है।
सही कहा आपने।
और मेरे लिए शायद ये समझना कि विचारों की दुनिया सीधे सपाट नहीं होती, उसमें हमेशा कई रंग होते हैं, कई परतें, कई अंतर्विरोध, शायद प्रबुद्धता का सबसे बड़ा तोहफा उसके दिए जवाब नहीं बल्कि वो सवाल हैं जो वो आज भी हमसे पूछती है। ये एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती।
बिल्कुल।
और इसी सोच के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
जरूर।
आज का युग सूचना युग कहलाता है, है ना, जहां जानकारी का अंबार है, गूगल है, विकिपीडिया है, सब कुछ है। तो क्या जानकारी की ये बाढ़ हमें कांट के जानने का साहस वाले आदर्श के करीब ला रही है?
या
कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी सारी सूचनाओं के शोर में हम खुद सोचना ही भूलते जा रहे हैं और आसान जवाबों या दूसरों की हां में हां मिलाने में ज्यादा सुकून महसूस करते हैं? सोचने वाली बात है।
लेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।